अरुणिमा की भावनाएं निशांत से छुपी नहीं थीं, या यूं कह लें कि अरुणिमा को इस वक्त सबसे बेहतर सिर्फ निशांत ही जानता था। उसे पता था कि अरुणिमा पिछले एक साल से कितनी ज्यादा आस्तिक के लिए बेचैन हो रही थी और उसके लिए कितनी ज्यादा तड़प रही थी। यो बात उसने अरुणिमा की आंखों में देखी थी, क्योंकि अरुणिमा की भावनाएं समझने के लिए उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने कितनी बार देखा कि अरुणिमा ने आस्तिक का नंबर अपनी स्क्रीन पर रखा हुआ है। वो कितनी बार कोशिश करती है उस नंबर को डायल करने की, लेकिन उसकी उंगलियां बीच में ही रुक जाती हैं। उसका चेहरा हताशा और निराशा से इतना भरा रहता था कि निशांत कई बार उसे संभालना चाहता था, लेकिन उसके खुद के कदम नहीं बढ़ रहे थे। दरवाजे पर खड़ी अरुणिमा की आंखों में आंसू का एक कतरा था, जो उसने वापस अपने जज्बातों के साथ अंदर ले लिया। वो एक गहरी सांस छोड़ती है और अपनी आंखें बंद करते हुए आस्तिक को याद करते हुए कहती है, तुमने तो वादा किया था ना? उसके बाद अरुणिमा अपनी ही बातों पर हंसते हुए कहती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हारे एक वादे के भरोसे पर अब तक यकीन कर रही हूँ। ये कहते हुए अरुणिमा ने सिर झुकाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है, और निशांत वहीं बैठा उसकी माँ को बस जाता हुआ देखता रह जाता है। एक बार फिर से अरुणिमा ने अपनी भावनाएं, अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद कर लिया था, और निशांत ये सब अच्छी तरह से देख रहा था। थोड़ी देर बाद निशांत और अरुणिमा दोनों पार्टी में मौजूद थे, और उनके सारे बिजनेस पार्टनर भी आ गए थे। बस अरुणिमा ने ऑरेंज जूस ले रखा था। सब लोग अपनी आने वाली डील्स के बारे में बात कर रहे थे और फेस्टिवल सीजन में उनके क्या क्या प्लान हैं वो सब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। आखिरकार पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। अरुणिमा ने भी बहुत एंजॉय किया था। ये उसकी जिंदगी का खुशनुमा पल था जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया था। लेकिन कल का दिन उन सब के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि कल उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, जिसके लिए उन सभी बिजनेस पार्टनर का एक साथ होना बहुत जरूरी था। इसलिए अरुणिमा ने जल्दी घर जाकर सोने का फैसला किया, ताकि कल की मीटिंग में वो एकदम फ्रेश महसूस कर सके। अरुणिमा बाहर की तरफ आ ही रही थी कि निशांत ने उसे रोकते हुए कहा, अरुणिमा रुको, मेरा इंतजार करो। अरुणिमा रुक जाती है और पलटकर निशांत को देखती है, तो निशांत उसके पास आते हुए कहता है, रात काफी हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैंने ड्रिंक कर रखी है और मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, निशांत ने हंसते हुए कहा। तो अरुणिमा मुस्कुरा दी। उसने निशांत को देखकर कहा, हॉस्पिटल जा रहे हो? निशांत ने हाँ में सिर हिलाया, तो अरुणिमा और निशांत दोनों अरुणिमा की गाड़ी में बैठ जाते हैं, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अरुणिमा की नज़रें खिड़की से बाहर सड़क पर थीं, और निशांत बार बार अरुणिमा को देखते हुए कहता है, क्यों परेशान हो रही हो? और अगर इतनी ही परेशान हो तो अगला कदम उठा लो, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता, अरुणिमा ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन मैं क्या बोलूंगी उससे, अगर उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है तो फिर मैं क्या कहूंगी? पिछले एक साल से मैंने उससे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, या उसके बारे में पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो मुझसे नाराज होगा, मैं उसकी नाराजगी का सामना नहीं करना चाहती। अरुणिमा की बात सुनकर निशांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अगर इतनी फिक्र है उसकी तो फिर उससे अलग ही क्यों हुई? अरुणिमा के चेहरे पर निराशा थी। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। वो आस्तिक से सुकून और शांति के लिए अलग हुई थी, लेकिन उससे अलग होने के बाद भी अरुणिमा को ना तो सुकून मिला और ना ही शांति। हाँ, वो एक नई अरुणिमा से जरूर मिली थी, जो जीवन में हर फैसला लेती थी और अपने जीवन के हर फैसले को सही साबित करती थी, लेकिन उसके मन के अंदर जो खालीपन था उसे भरने के लिए कोई भी नहीं था। लोगों के सामने स्ट्रांग दिखने वाली अरुणिमा अकेले में कितनी तड़पती थी, ये किसी को नजर नहीं आता था। निशांत ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें भूल गया होगा? उसकी बात सुनकर अरुणिमा के गले में गांठ सी बन गई। अरुणिमा के लिए ये महसूस करना भी एक बहुत दुखद अनुभव था कि आस्तिक ने उसे भुला दिया है। पता नहीं, अरुणिमा ने बस इतना ही कहा और निशांत का चेहरा भावहीन हो गया। अरुणिमा की हालत उससे छुपी नहीं थी और ना ही उसके जज्बात, बस वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अरुणिमा को सच में क्या चाहिए। अरुणिमा ने पूछा, निशांत तुम्हें क्या लगता है, मैंने आस्तिक से तलाक लेकर कुछ गलत किया है? निशांत ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त ये जरूरी भी था। तुम्हारे और आस्तिक के रिश्ते में जितनी कॉम्प्लिकेशंस थी, ऐसे में तुम लोगों का उस समय अलग हो जाना ही बेहतर था, ताकि तुम्हें अपने लिए और उसे अपने भविष्य के लिए कुछ समय मिल सके। देखो अरुणिमा, कभी कभी हमें किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कड़वी दवाई का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई खराब थी, इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन खराब थी। तुम्हारी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे तुम निभाना चाहती थी। हाँ, एक आखिरी उम्मीद थी, तुम दोनों का बच्चा और तुम दोनों का प्यार, लेकिन तुम्हारा बच्चा शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। लेकिन प्यार, प्यार तो मुझे आज भी तुम्हारी आंखों में नजर आता है। असली प्यार वही होता है अरुणिमा, जब आप अपने प्यार के पास ना हो तब भी उसे प्यार करते हो। पास रहकर तो हर कोई प्यार निभा लेता है, लेकिन दूर रहकर किसी को सच्चे दिल से चाहना ही असली प्यार की परिभाषा है। उसकी ऐसी फिलॉसफी जैसी बातें सुनकर अरुणिमा हंसने लगी और वो हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, तुम्हें पता है प्यार के बारे में? तो जनाब, लव गुरु और प्यार के प्रोफेसर मुझे इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हो। खुद का हाल तो आरुषि से बताया नहीं गया और बड़े आए मुझे प्यार का पाठ पढ़ाने वाले। पहले जाकर अपने प्यार का इजहार करो, उसके बाद मुझे सिखाना कि क्या करना है क्या नहीं। अगर मुझे एक और मौका मिलेगा तो मैं आस्तिक के सामने जरूर कहूंगी कि मैं उसे हमेशा से प्यार करती आई हूँ। लेकिन तुम बताओ, क्या तुम आरुषि के सामने कह सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो जब वो कोमा से उठ जाएगी?